नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, अटेंशन फैक्ट्री, मैथ्यू ब्रेनन की गैर कथा व्यावसायिक और प्रौद्योगिकी विश्लेषण पुस्तक है। यह टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस के उभार को समझाती है, जो 2012 में बीजिंग की एक छोटी टीम से शुरू होकर वैश्विक इंटरनेट प्रतिस्पर्धा का प्रमुख नाम बन गई। पुस्तक का विषय केवल एक लोकप्रिय ऐप की सफलता नहीं है, इसका केंद्र वह बदलाव है जिसमें उपयोगकर्ता जानकारी को खोजने के बजाय एल्गोरिदम द्वारा चुनी गई जानकारी तक पहुंचता है। ब्रेनन बाइटडांस के संस्थापक झांग यिमिंग की सोच टाउटियाओ से डोयिन और टिकटॉक तक उत्पादों के विकास तथा चीन के मोबाइल इंटरनेट परिवेश का विश्लेषण करते हैं। वे बताते हैं कि सिफारिश इंजन, कंटेंट संचालन और आक्रामक ग्रोथ हैकिंग ने मिलकर ध्यान को मापने, बनाए रखने और व्यावसायिक मूल्य में बदलने वाली व्यवस्था बनाई। पुस्तक का उद्देश्य टिकटॉक की सतही लोकप्रियता के पीछे मौजूद तकनीकी, संगठनात्मक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को स्पष्ट करना है। यह चीन और पश्चिम के इंटरनेट मॉडलों के मिलन, प्रतिस्पर्धा और अंतर को भी उपयोगी संदर्भ में रखती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, खोज आधारित इंटरनेट से एल्गोरिदम द्वारा संचालित फीड तक का बदलाव। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि बाइटडांस ने इंटरनेट के पुराने खोज मॉडल को चुनौती दी। पुराने मॉडल में व्यक्ति अखबार का पन्ना चुनता, सर्च इंजन में शब्द लिखता या सामाजिक नेटवर्क पर अपने परिचितों की पोस्ट देखता था। टाउटियाओ और बाद में डोयिन तथा टिकटॉक ने इसके विपरीत रास्ता अपनाया। यहाँ प्रणाली उपयोगकर्ता के छोटे छोटे व्यवहार संकेतों, जैसे देखने की अवधि, इत स्क्रॉल करने की गति, दोबारा देखने और प्रतिक्रिया देने के आधार पर अगला कंटेंट चुनती है। इस प्रकार सूचना उपयोगकर्ता तक पहुंचती है, न कि उपयोगकर्ता केवल सूचना तक। ब्रेनन इस बदलाव को झांग यिमिंग के उस विश्वास से जोड़ते हैं कि स्मार्टफोन पारंपरिक मीडिया के वितरण को बदलेंगे और मशीन लर्निंग कई संपादकीय फैसलों को संभाल सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि मानव रचनाकार या संपादक अप्रासंगिक हो जाते हैं, बल्कि चयन, पैकेजिंग और वितरण में उनकी भूमिका एल्गोरिदमिक मापदंडों के साथ जुड़ जाती है। पुस्तक की उपयोगिता इस बात में है कि वह टिकटॉक को केवल मनोरंजन मंच नहीं मानती, बल्कि व्यक्तिगत मीडिया वितरण की नई संरचना के रूप में देखती है। यही संरचना समाचार, विज्ञापन, मनोरंजन और ई कॉमर्स के लिए व्यापक असर रखती है। दूसरा, सिफारिश इंजन का डेटा और जुड़ाव वाला आत्म सुदृढ़ चक्र। ब्रेनन के विश्लेषण में बाइटडांस की प्रतिस्पर्धी क्षमता का केंद्र उसका सिफारिश इंजन है। इसका आधार एक आत्म सुदृढ़ चक्र है। जब उपयोगकर्ता फीड में अधिक समय देता है तो मंच को उसकी रुचियों के बारे में अधिक व्यावहारिक डेटा मिलता है। बेहतर डेटा से अगली सिफारिशें अधिक प्रासंगिक बनती हैं और प्रासंगिकता बढ़ने पर उपयोगकर्ता फिर अधिक समय देता है। यह चक्र टिकटॉक के अनुभव को केवल मित्रों के नेटवर्क से अलग करता है, क्योंकि शुरुआती उपयोगकर्ता को भी लोकप्रिय या परिचित खातों का बड़ा नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं होती। सिस्टम उसके प्रत्यक्ष व्यवहार से सीखना शुरू कर सकता है। पुस्तक यह भी संकेत देती है कि इस तकनीकी लाभ के लिए विशाल मात्रा में कॉन्टेंट, निरंतर परीक्षण और मजबूत मशीन लर्निंग अवसंरचना आवश्यक है। इसलिए एल्गोरिदम को कोई रहस्यमय एकल सूत्र समझना गलत होगा। उसकी गुणवत्ता डेटा, उत्पाद डिजाइन, रचनाकारों की आपूर्ति और संचालन के संयोजन से बनती है। इस मॉडल का दूसरा पक्ष भी है। जब मंच का लक्ष्य ध्यान बनाए रखना हो तो कंटेंट की दृश्यता संपादकीय निर्णयों से कम और मापे जा सकने वाले व्यवहार से अधिक प्रभावित होती है। पुस्तक पाठक को इसी कारण सिफारिश प्रणालियों को तकनीकी सुविधा के साथ साथ सांस्कृतिक शक्ति के रूप में देखने का आधार देती है। तीसरा, कंटेंट संचालन ने छोटे वीडियो को एक स्थायी आपूर्ति तंत्र बनाया। अटेंशन फैक्ट्री बाइटडांस की सफलता को केवल कोड की उपलब्धि नहीं बताती। पुस्तक के अनुसार कंटेंट संचालन उतना ही आवश्यक स्तंभ था। एक प्रभावी फीड तभी चल सकता है जब उसके पास अलग अलग रुचियों, प्रारूपों और गुणवत्ता स्तरों वाला पर्याप्त नया कंटेंट हो। डोयिन और टिकटॉक के संदर्भ में इसका अर्थ रचनाकारों को आकर्षित करना, चलन को पहचानना, उपयोग में आसान रचनात्मक उपकरण देना और मंच के अनुकूल सामग्री की समझ विकसित करना है। छोटे वीडियो का प्रारूप इस प्रक्रिया के लिए उपयोगी था, क्योंकि इसे मोबाइल पर बनाना और देखना अपेक्षाकृत सरल है। फिर भी सामग्री का निरंतर प्रवाह अपने आप उत्पन्न नहीं होता। मंच को रचनाकारों, दर्शकों और विज्ञापन या व्यावसायिक अवसरों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। ब्रेनन चीन के तीव्र मोबाइल केंद्रित इंटरनेट परिवेश को इस प्रयोगशीलता की महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि के रूप में रखते हैं। वहां उत्पादों की नकल, सुधार और वितरण की गति बहुत तेज थी। इस विषय से यह स्पष्ट होता है कि वायरलिटी एक अनियोजित दुर्घटना भर नहीं है, मंच डिजाइन, समुदाय प्रबंधन और डेटा आधारित प्रतिक्रिया के जरिए उसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। साथ ही पुस्तक डोयिन के चीनी युवा संस्कृति पर प्रभाव और टिकटॉक के वैश्विक सांस्कृतिक वितरण को जोड़ती है, जिससे दिखता है कि तकनीकी मंच स्थानीय रचनात्मक आदतों को भी बदलते हैं। चौथा, चीन शैली की ग्रोथ हैकिंग और पश्चिमी बाजारों में टिकटॉक का प्रवेश। पुस्तक बाइटडांस के विस्तार को यह मानकर नहीं समझती कि बेहतर उत्पाद अपने आप वैश्विक दर्शक पा लेता है। ब्रेनन ग्रोथ हैकिंग को कंपनी की तीसरी प्रमुख क्षमता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आरंभिक दौर में बाइटडांस ने एंड्रॉइड प्रणाली में ऐप प्री इंस्टॉल जैसे वितरण उपायों का इस्तेमाल किया। ऐसे उपायों का उद्देश्य उपयोगकर्ता तक पहुंचने की लागत और घर्षण घटाना था। बाद में पश्चिमी बाजारों में कंपनी ने ऐप इंस्टॉल विज्ञापनों पर बड़े खर्च के साथ प्रवेश किया। यह रणनीति विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि चीनी इंटरनेट कंपनियों के लिए पश्चिमी उपभोक्ता बाजार में सफल होना ऐतिहासिक रूप से कठिन रहा था। पुस्तक टिकटॉक की आरंभिक अमेरिकी छवि की सीमाओं को भी नहीं छिपाती। उसे कुछ समय तक बच्चों, लिपसिंक वीडियो और अजीब ऑनलाइन संस्कृति से जोड़ा गया। यह उदाहरण दिखाता है कि भारी प्रचार से डाउनलोड तो मिल सकते हैं, लेकिन सामाजिक स्वीकृति उत्पाद अनुभव और समुदाय की गुणवत्ता से बनती है। टिकटॉक का बाद का विकास इसलिए उल्लेखनीय है कि इसका सिफारिश मॉडल विभिन्न रचनाकार समुदायों और रुचियों को तेजी से दृश्यता दे सका। इस अध्याय का व्यावहारिक सबक है कि वितरण और उत्पाद को अलग विभागों की तरह नहीं देखना चाहिए। मजबूत वितरण शुरुआती डेटा और दर्शक देता है, जबकि बेहतर अनुभव उस पहुंच को टिकाऊ उपयोग में बदलता है। अंत में बाइटडांस के उभार में चीन, वैश्विक संस्कृति और ध्यान की राजनीति ब्रेनन बाइटडांस की कहानी को एक कंपनी की व्यावसायिक जीवनी तक सीमित नहीं रखते। वह इसे चीन के इंटरनेट नवाचार और वैश्विक डिजिटल शक्ति संतुलन के संदर्भ में रखते हैं। टाउटियाओ जैसे AI संचालित सूचना उत्पाद से डोयिन और टिकटॉक जैसे वीडियो मंच तक की यात्रा बताती है कि चीन में विकसित उत्पाद पद्धतियां दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं तक पहुंच सकती हैं। यह उस पुराने अनुमान को चुनौती देती है कि वैश्विक इंटरनेट उत्पादों की दिशा केवल सिलिकॉन वैली तय करती है। फिर भी पुस्तक का अर्थ यह नहीं कि चीन और पश्चिम के बाजार एक जैसे हैं। नियमन, मीडिया व्यवस्था, उपभोक्ता व्यवहार और सांस्कृतिक संकेत अलग हैं। डोयिन और टिकटॉक संबंधित उत्पाद हैं, लेकिन उनके संचालन और बाजार संदर्भ अलग रहे हैं। ध्यान को संसाधन मानने का विचार इस विषय को और व्यापक बनाता है। जिस कंपनी के पास लोगों के समय, रुचि और प्रतिक्रिया को समझने की क्षमता है, उसके पास सांस्कृतिक प्रभाव और विज्ञापन शक्ति दोनों हो सकते हैं। इसलिए टिकटॉक पर होने वाली बहस केवल छोटे वीडियो या मनोरंजन की बहस नहीं है। उसमें डेटा, मंच, शासन, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और सार्वजनिक सूचना के वितरण के प्रश्न भी शामिल हैं। पुस्तक इन मुद्दों का अंतिम नीति समाधान नहीं देती, लेकिन यह समझने के लिए ठोस ऐतिहासिक संदर्भ देती है कि एक चीनी कंपनी वैश्विक सांस्कृतिक मंच कैसे बन सकी। निष्कर्ष में अटेंशन फैक्ट्री उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो टिकटॉक को केवल एक वायरल वीडियो ऐप के रूप में नहीं, बल्कि आधुनिक इंटरनेट के बदलते ढांचे के रूप में समझना चाहते हैं। उत्पाद प्रबंधक, विपणन पेशेवर, निवेशक, मीडिया शोधकर्ता और डिजिटल रचनाकार इससे सिफारिश प्रणालियों, कंटेंट आपूर्ति और उपयोगकर्ता अधिग्रहण के परस्पर संबंध को बेहतर समझ सकते हैं। सामान्य पाठक के लिए भी यह पुस्तक उपयोगी है, क्योंकि यह रोजमर्रा की स्क्रॉलिंग आदत के पीछे काम कर रहे व्यावसायिक और तकनीकी तर्क को सरल संदर्भ देती है। इसका व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक एल्गोरिथमिक फीड को निष्पक्ष या स्वाभाविक मानने के बजाय उसे डिजाइन किए गए उत्पाद अनुभव के रूप में देखना सीखता है। बाइटडांस की रणनीति से यह भी स्पष्ट होता है कि वैश्विक विस्तार में उत्कृष्ट तकनीक, स्थानीय सांस्कृतिक समझ और अनुशासित वितरण तीनों जरूरी हैं। समान श्रेणी की कई पुस्तकें या तो सोशल मीडिया के सामाजिक प्रभाव पर केंद्रित रहती हैं या किसी कंपनी की सफलता को सामान्य नेतृत्व कथाओं में बदल देती हैं। ब्रेनन की पुस्तक इन दोनों सीमाओं से अलग है। इसकी विशिष्टता बाइटडांस के अंदरूनी उत्पाद तर्क, चीन के मोबाइल इंटरनेट परिवेश और टिकटॉक के वैश्विक प्रभाव को एक ही विश्लेषण में जोड़ने में है। यह न तो टिकटॉक का प्रचार है, न केवल चेतावनी, बल्कि यह ध्यान की अर्थव्यवस्था को चलाने वाली प्रणाली, उसके अवसरों और उसके व्यापक प्रभावों का केंद्रित अध्ययन है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं मैथ्यू ब्रेनन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।